अगला बाब देखेंगे इसी किताब का, रुख्सत इस सौम। रोज़ों में रुख्सत के मसाइल, इसका क्या मतलब है कि क्या मौके हैं या क्या चीज़ें हैं कि जिस मौके पे रोज़ा छोड़ा जा सकता है या उसको बाद में रखना ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ तो है लेकिन किस मौके पे इसमें गुंजाइश है। सफ़र में रोज़ा रखना और छोड़ना दोनों दुरुस्त हैं। दलील, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, हमज़ा बिन अमर अल असलमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफ़र में रोज़ा रखूं? और वो कसरत से रोज़ा रखने वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे तो रख, चाहे तो ना रख। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। अगली रिवायत अबू सईद अल-खुदरी से, कहते हैं कि हम 16वें रोज़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए निकले। हम में से बास लोगों ने रोज़ा रखा, बास ने छोड़ दिया। ना रोज़ेदार ने बेरोज़ पर एतराज़ किया और ना बेरोज़ ने रोज़ेदार पर एतराज़ किया। सही मुस्लिम ने रिवायत किया। हम होते तो क्या करते, एतराज़ात के साथ हम तो फतवे भी देते हैं। और आप देखिए कि दूसरी चीज़ जो इसमें पढ़ते हुए मैंने महसूस की, रमज़ान में भी जिहाद करते थे और हम रमज़ान में सोच भी नहीं सकते कि कोई एक्स्ट्रा इबादत की जाए या कोई मशक्क़त वाला काम किया जाए। तो ज़िंदगी के मामूला जो होते हैं ना, वो नहीं बदलते, उसके साथ ही चलना है। जो बंदा हर हाल में और हर जगह हर वक्त अल्लाह की इबादत करेगा ना, वही इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला की नज़रों में ज़्यादा आला मुकाम हासिल करेगा। अगली बात, हैज़ और निफास वाली औरत को मस्कूरा हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हैज़ या निफास ख़त्म होने के बाद रोज़े की कज़ा अदा करनी होगी। अगला मसला, दूध पिलाने वाली हामिला औरत को रोज़ा न रखने की रुख्सत है, बाद में सिर्फ कज़ा होगी। अब इन दोनों मसलों की दलील, हज़रत अबू सईद अल-खुदरी ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि औरत जब हाइजा होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है और ना रोज़ा रख सकती है? अंदाज देखिए बात बताने का, आपने फरमाया कि ऐसा नहीं है, यानी मुराद क्या था, कि यानी ऐसा ही है कि औरत जब हाइजा होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है, और उनके दीन में कमी की यही वजह है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। हज़रत अनस बिन मालिक, ये दूसरी दलील है इस मसले की, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर को रोज़ा मुअख्खर करने और निस नमाज की रुख्सत दी है, जबकि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा मुअख्खर करने की रुख्सत दी है। इसे अहमद, अबू दाऊद, निसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तीसरी दलील, अबू जन्नाद रहमहुल्लाह कहते हैं, मसनून और शरई अहकाम बसा औकात राय के बरक्स होते हैं। राय का मतलब क्या है कि इंसान को अक्ल में वो बात नहीं आती या लोगों की राय उससे बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। क्या है? कैसे, मिसाल क्या है? कहते हैं इन्हीं अहकाम में एक ये है कि हाइजा रोज़ों की कज़ा तो दे लेकिन नमाज की कज़ा ना दे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। यानी अक्ल कहती है कि अगर रखे तो दोनों रखे, ना रखे तो दोनों ना करे। ऐसी है ना भाई, लोग पूछ सकते हैं ना आज के दौर में भी कि अच्छा जी ये क्या बात है, रोज़ों की कज़ा क्यों करेगी, नमाज की क्यों नहीं कर रही? अच्छा नमाज की कज़ा नहीं तो फिर रोज़ों की भी नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं कि शरई अहकाम अक्ल के ख़िलाफ़ भी होते हैं, राय के ख़िलाफ़ भी होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहा करते थे कि अगर शरीयत में या इस्लाम के अहकामात में अक़ल का दखल होता तो फिर जो जुराबों पे मसा किया जाता है वो पाँव के ऊपर की बजाय पाँव के नीचे से होता। तो इससे एक कितनी खूबसूरत दलील मिल गई उन लोगों की जो हर बात के अंदर कहते हैं ना कि जैसे बाल की खाल निकालना और हुज्जतें पेश करना, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हाँ है, अल्लाह का हुक्म है, तुम कौन हो? हमारी छोटी सी अक़ल है, उसमें इतनी बड़ी ज़ात के किए हुए फैसले समा सकते हैं? बच्चों के लिए माँ बाप कई फैसले करते हैं ना, क्या हर बच्चे को माँ बाप के किए हुए फैसले की वजह समझ आ जाती है? आप बच्चों से पूछिए, सुबह आप उनको सुबह सुबह उठा के स्कूल भेजते हैं, उनके छोटे से दिमाग इसको कबूल ही नहीं करते, आप क्यों भेजती हैं? अब आप उसको वजह बताते हैं, आप कहते हैं उठो चलो बस निकलो जल्दी चलो देर हो रही है। कोई बच्चा आपसे पूछने लग जाए कि आप ये बताएं कि आप ये मुझे चॉकलेट्स इतनी नहीं खाने दे रही, इसकी वजह क्या है? अब हम तो उसको लॉजिक देंगे ना, दांत खराब होंगे ये और वो, लेकिन आप पसंद नहीं करते जब कोई आपसे वजह पूछता है। हालांकि हम भी इंसान हैं, बच्चे भी इंसान हैं, لیکن اللہ کی ذات جو خالق، مالک، رازق اور ہر کام کے فیصلے کرنے والا ہے، کیا پھر اس کی باتیں ہمیں ضروری ہے کہ سمجھ آ جائیں؟ تو لہٰذا کبھی بھی ایسی بات ذہن میں آئے تو استغفار پڑے انسان، اور یہ سوچ لے کہ میں چھوٹا، میری عقل مجھ سے بھی چھوٹی، اللہ کی ذات بڑی، اس کے فیصلے بڑے، میرا کام کیا ہے کہ سمعنا و اطعنا۔ اور یہی ایمان والوں کا قول ہوتا ہے کہ وہ بات کو سن کے مانتے ہیں حجتیں کرنے کی بجائے۔ اگلا مسئلہ ہے، سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی صرف اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے، جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی اسے توڑ دیا، اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہاں اتنا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، پھر اس کو اوپر دکھایا، سب نے اس کو دیکھ لیا، یعنی کوئی شک نہ کرے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کھولا ہے کہ نہیں کھولا روزہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے پیا، یعنی عصر کے بعد۔ ہمارے ہاں عموماً آج کل ایک عجیب و غریب کہانی ہے، ایون پیریڈز بھی ہو جائیں تو کہتے ہیں عصر کے بعد ہوں تو پھر روزہ نہ کھولو، پتہ نہیں یہ شریعت آتی کہاں سے ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور سنتے سنتے پھر کتنی آگے چلی جاتی ہے بات۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی وقت جب محسوس ہو کہ سفر یا کوئی کام جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو پھر روزہ توڑا جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں، یہ مجبوری کی بات ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ سے کوئی روزہ کھول لیا جائے، رکھا اور توڑ لیا، تو اس کی سزا آپ نے معراج کے سفر میں آپ نے پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کچھ لوگ دکھائے گئے تھے کہ جن کے منہ سے خون نکل رہا تھا، تو کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو وقت سے پہلے روزے کھا لیتے تھے، یعنی روزہ کھول دیتے تھے۔ تو بغیر عذر کے کھولیں گے تو بہت بڑی پکڑ ہے، لیکن عذر کے ساتھ کھولیں گے تو کچھ پکڑ نہیں۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کی ذات بندے سے محبت کرتی ہے؟ اور کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے وہ سراسر عملی طور پہ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ بس ایک حکم دے دیا بس، حکم دینے والی بات نہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ پھر اگلی بات، بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ دلیل، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا۔ تو بات واضح ہے، کوئی بیماری جس میں لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ صحت یابی کی امید کم ہے، ویسے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والا ہر وقت اس امید میں رہے کہ آج اگر بیمار ہوں تو کل ٹھیک ہوں گا۔ بڑھاپا تو نہیں جاتا واپس آنے کے بعد، لیکن انسان اس امید میں رہے کہ میں کل ٹھیک ہوں گا اور میں رکھوں گا پھر روزے، اور انشاءاللہ جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی لگ رہی ہے کہ بات نہیں، تو پھر کفارہ دے دیا جائے، اور پھر اگر بعد میں اللہ تعالیٰ موقع دے تو روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلاً بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور اردا یعنی دودھ پلانے والی وغیرہ، کہ ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو اسے توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ آسان درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ رکھنا چاہتا ہے، نہیں رکھ رہا۔ ویسے بھی دیکھیں، جب روزہ ہوتا ہے تو کیا ہم صبح ہی کھانا شروع ہوتے ہیں؟ بعض لوگ ناشتے کے عادی نہیں ہوتے، وہ دوپہر تک ہی نہیں کھاتے، تو آدھا دن کا روزہ تو آپ ویسے ہی رکھ سکتے تھے۔ کبھی گیو اپ نہ کریں، کبھی گیو اپ نہ کریں کسی دین کے معاملے میں، ہارتے نہیں ہیں، جو خود سے ہار جاتے ہیں نا پھر ان کو دوسرے بھی ہرا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا رکھیے دوپہر تک، ٹالتے رہیے ٹالتے، اچھا بھی کھولتی ہوں، اچھا بھی کھولتی ہوں، اچھا آدھا گھنٹہ، اچھا ذرا ایک گھنٹے بعد، اچھا یہ کام کر لوں پھر کھول لوں گی، ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی دفعہ آپ کہیں گے اچھا اب ایک گھنٹہ دو رہ گئے، چلو میں رکھ ہی لیتی ہوں، انشاءاللہ رکھ لیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے، رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزے دار ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یعنی بعض اوقات لوگ روزہ رکھ کے جو ہے نا इतना अजर नहीं पाते जितना लोग उसकी खिदमत करके पा लेते हैं। यह हदीस यहाँ मुख्तसर है, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मैंने पूरी रिवायत भी इसकी एक जगह पढ़ी हुई है कि यानी सफर था और गर्मी और लोग उसको पंखा झल रहे हैं, कोई उस पर पानी डाल रहा है, तो यानी अब अमूमन देखिए जब रोज़ा होता है तो फिर दूसरे ऊपर वाले लोग यही कुछ कर रहे होते हैं, तो कभी ऐसी अगर कैफियत आए कि आपकी बजाय दूसरे पे ज़्यादा मुश्किल है तो फिर उसका अजर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस तरह करने से रोज़ा मुश्किल है तो फिर खोल दें, क्यों किसी को भी मुश्किल में डालें और ख़ुद को भी मुश्किल में डालें। कोई सवाल इस बाब में से? बात वाज है, बहुत सिंपल मसले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अगला बाब देखते हैं। सियामुल कदाई, कज़ा रोज़ों के मसाइल। फ़र्ज़ रोज़े की कज़ा आइंदा रमज़ान से पहले किसी भी वक्त अदा की जा सकती है। दलील, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाकी रहते और मैं कज़ा रोज़े शाबान से पहले रखने का मौका ना पाती। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। किसी भी वजह से जो रोज़े छूटते हैं और इसी में ख़वातीन के छूटे हुए जो रोज़े हैं, तो उसकी डेड लाइन जो है वो अगला रमज़ान है, उसके अंदर अंदर कभी भी रखा जा सकता है। अगला मसला है, फ़र्ज़ रोज़ों की कज़ा मुतफरिक तौर पर या लगातार दोनों तरह जायज़ है। मुतफरिक क्या, आज रखा फिर एक दो चार दिन बाद रख लिया, एक अगले महीने रख लिया, यानी पूरे 11 महीने में अगले रमज़ान के आने में कभी तक रखें तो भी जायज़ है, और कंटिन्यूसली 5 6 7 जो भी किसी के हैं वो रखें तो भी ठीक है। दलील क्या है, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रोज़ों के बारे में पहले यह आयत नाजिल हुई कि कज़ा रोज़े रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में मुसलसल रखे जाएं, लेकिन बाद में मुसलसल रोज़े रखने का हुक्म ख़त्म हो गया। इसे दारकुतनी ने रिवायत किया। दूसरी दलील, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, कज़ा रोज़े रखने में अलग अलग रोज़े रखे जाएं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है दूसरे दिनों में गिनती पूरी की जाए। इसे बुखारी ने रिवायत किया, यानी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि अब कोई ख़ास दिनों में पूरा किया जाए। तो हमारे लिए इस चीज़ में से क्या बात पता चली कि कोशिश तो करनी चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो रख लें, ज़िंदगी का नहीं पता, लेकिन रुख्सत मौजूद है। ये बिल्कुल वही बात है कि आपको कोई बिल मिलता है और उसकी वैलिडिटी होती है कि आपको 1 महीने के अंदर इसको जमा कराना है, तो आखिरी डेट तक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आप अपने आप को मुश्किल में डालने और आखिरी दिन के रश से बचाने के लिए आप पहले ही कर लेते हैं, जो पहले कर लेगा उसको फ़ायदा होगा। अब इसी में एक मसला आगे आएगा इंशाल्लाह, तो उसको भी यहाँ देख लेते हैं कि छुटे हुए रोज़े भी हैं और शवाल के रोज़े भी रखने के, तो वो इंशाल्लाह बल्कि वहाँ बात करेंगे, बेहतर है। ये जो आपने भी सवाल किया था, कहती हैं कि जो पिछली ज़िंदगी के छुटे हुए रोज़े थे और हमें नहीं पता था इस मसले का कि क्या करें, नहीं रखते थे तो अब क्या करें, इसके बारे में इंशाल्लाह। और जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत अहम सवाल है आपका, और ये वो चीज़ है कि जिससे उम्मत की गफलत दिखती है कि नमाज़ें जिसको अल्लाह ने माफ़ किया हुआ है, जो पीरियड्स की भी हम नहीं दोहराते, उसको तो हम कुछ मुख्तलिफ नाम दे के रख किसी न किसी तरीके से अदा करवाते हैं, और बल्कि पूरे चार्ट्स बनवा के लोग इस चीज़ के ऊपर यानी कोशिश करते हैं कि रखें, लेकिन रोज़ा जिसके बारे में इतना भी हुक्म है, जो अगला ही मसला आ रहा है, कि मरने वाले के कज़ा रोज़े इसके वारिस को रखने चाहिए। दलील क्या है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मम्मा तवा अलैहि सियामुन साम अन्हु वलीयुहु। मुत्तफकुन अलैह, जो शख्स मर जाए इस पर फ़र्ज़ रोज़े रखने बाकी हों तो इसका वारिस इसकी तरफ से कज़ा रोज़े रखे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इससे क्या पता चला कि जो रोज़े हमारे छुटे होते हैं वो हमने रखने हैं। और अब आपका सवाल यह है कि पिछली ज़िंदगी के छुटे हैं क्या करें, बहुत आसान है। हर औरत को अमूमन पता ही होता है कि किस साल में वो बालिग हुई थी, उस साल से लेके आज तक के हर साल को अपनी आदत के मुताबिक देख लें, 5 6 जो भी छुटते हैं उतने को काउंट कर लें, और उसके हिसाब से फिर आपके ज़ाहिर है कि अगर पिछले 15 20 साल के रोज़े रुक छुटते हैं तो अल्लाह के हुक्म से नियत करें। तरीका उसका बहुत अच्छा, आसान तरीका जो बहुत लोगों को बताया जाता है और प्रैक्टिकल भी रहता है, जिसमें आपको एक में दो का सवाब मिलता है, और वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। आगे एक चैप्टर आ रहा है जिसमें नफली रोज़ों का जिक्र होगा, तो उस पे इसका जिक्र आएगा। तो आप हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखने की नियत कर लें, चले एकदम ये नहीं कर पा रहे तो हर महीने के बीच के रोज़े, अयामे 20 के रोज़े कहते हैं, 13 14 और 15, चांद जब पूरा फुल मून होता है, एक दिन उससे पहले और एक दिन उसके बाद, ये 3 रोज़े रखना भी आपकी सुन्नत थी। आप इन 3 की शुरू कर लें नियत, करेंगे आप नियत अपने फर्ज रोजे की, लेकिन उन दिनों में रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसका भी अजर मिलेगा। इसी तरह पीर और जुमेरात, आप पीर और जुमेरात को रखें लेकिन अपना पिछला छुटा हुआ रोजा रखेंगे। फर्क थोड़ा सा होता है हुक्म में, वो भी बता दूं, क्योंकि मैंने एक दफा भुगता था तो आप ना भुगते। जैसे फर्ज रोजा हम रख के नहीं छोड़ सकते ना, कज़ा तोड़ नहीं सकते, पीछे हमने पढ़ लिया, लेकिन नफली रोजा आप कभी चाहे मर्जी छोड़ दें, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह आपने फर्ज रोजे की कज़ा कर रहे थे गैर रमजान में, आपका रोजा आपको बताया ये फर्ज है, अब इसको भी बगैर वजह से नहीं छोड़ सकते। अब अगर इसको आपने बगैर वजह से छोड़ दिया, तोड़ दिया, तो आपको कफारे में फिर यानी उसका अच्छा खासा कफारा है, 60 मिसकिनों को खाना खिलाना होता है या मुसलसल रोजे रखने की कैफियत होती है। तो उस सूरत में अगर आप बाकी दिनों में पीर या जुमेरात को रख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी उस फर्ज रोजे की नियत है। तो उसमें फिर वो दो पाबंदियां रहेंगी। क्या थी पहली पाबंदी? यानी फजर से पहले नियत करनी है। अगर आप बाकी दिनों में भी छुटे हुए रोजों में अपने फर्ज रोजे कजा कर रहे हैं तो उसके लिए आप नियत कर लेंगे कि मेरा रोजा है, और दूसरा ये कि बिला वजह फिर उसको तोड़ नहीं सकते। मुझे एक वक्त था, बहुत पहले की बात है, ये मसला पता नहीं था या भूली, मैंने अपना कोई छुट्टा हुआ रोजा रखा हुआ था, फिर मैं अपनी किसी दोस्त के घर गई और उसके अम्मी ने कहा खाना खा लो, नफिल ही है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने खुशी से खा लिया ये सोच के कि ये तो नफिल रोजा है। नफिल यानी वो जहन से झटक गया कि भाई ये रोजा मेरा अपना तो फर्जी था, और फिर बाद में मुझे उसका कफारा देना पड़ा। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि फिर ये मसला भूला नहीं है। ठीक है, तो आप बाकी दिनों में रखते जाएं, गिनते जाएं, फिर ना रख सकेंगे अल्लाह ताला को बताए आपकी जिंदगी का नहीं, कज़ा भी दे दें उनकी, चले एक कफारे के तौर पे यानी दे दें, लेकिन पिछले रोजे रखें। हम ना रख सकें, वसीयत करके जाएं कि हमारे बाद वाले लोग रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी सिस्टर्स को जानती हूँ कि माँ बाप की वफ़ात के बाद अभी तक वो उनके छुटे हुए रोजे रख रहे हैं। बाज़ लोग रखते ही नहीं थे, छुटते थे, तो इन दोनों चीज़ों में ये चीज़ हमारे सामने आ गई कि रोजे का मामला नमाज से फ़र्क है। जब मर्जी रखे, अल्लाह ने आप पे रुख्सतें रखी, आप लोग तो रखे दिसंबर में। फिर ये एक और मसला यहाँ से समझ लीजिए कि एक पीरियड्स के या एक साल के छुट्टे हुए रोजे अगले साल तक हम रखते हैं ना, अगर बिलफर्ज एक साल से ऊपर गुजर गया, यानी पिछले साल के हमने अभी नहीं रखे और अब अगला रमजान आ जाता है, गुजर जा आ गया, तो फिर उसके बाद कफारा भी होता है, यानी एक किस्म की वो लेट फीस जैसे हम कहते हैं ना। एक साल के अंदर अंदर छुटे हुए रोजों को आप रख लेंगे तो सिर्फ कजा है, एक साल से ऊपर दिन हो गए तो कफारा भी है। और आप देखें हमारे तो पिछले कितने सालों के, अब हर साल का कफारा गिनेंगे तो मुश्किल होगा ना। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें, लेकिन यह है कि साथ कफ़ारा भी दे दें और रोज़े भी रखना शुरू कर दें। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अगला मसला है नफली रोज़े की कज़ा अदा करनी वाजिब नहीं। दलील, उम्मे हानी कहती हैं फ़तह मक्का यानी योम फ़तह के रोज़ हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह की बाईं तरफ आकर बैठी और मैं यानी उम्मे हानी रदी अल्लाहु अन्हा आपके दाईं तरफ। इतने में एक लौंडी बर्तन लेकर आई जिसमें पीने की कोई चीज़ थी। लौंडी ने वो बर्तन रसूलुल्लाह को दिया, आपने इस बर्तन से पिया, फिर वो बर्तन मुझे दिया गया, मैंने भी इससे पिया और कहा अल्लाह के रसूल मेरा रोज़ा था, मैंने आपका जूठा पीने के लिए रोज़ा तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। आपने पूछा क्या तुमने कज़ा रोज़ा रखा था? मैंने अर्ज़ किया नहीं। आपने फरमाया अगर नफली रोज़ा था तो कोई हरज की बात नहीं। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। क्योंकि बाज़ लोग शिद्दत बरतते हैं, कहते हैं अगर नफली इबादत शुरू करके तोड़ दी तो फ़र्ज़ हो गई, रोज़ा तोड़ दिया तो फ़र्ज़ हो गया, उम्रे के लिए अब चलने जा रहे थे उम्रा के लिए कि बीच में रुक गए या नियत छूट गई तो वो फ़र्ज़ होता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह का फ़र्ज़ किया हुआ और बंदे की तरफ से खुद पे फ़र्ज़ किया हुआ या नफिल ये बराबर नहीं हो सकते। अगर किसी ने बादिल की वजह से रोज़ा कबल अज़ वक्त इफ्तार कर लिया लेकिन बाद में यकीन हो गया कि सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ था, इस सूरत में कज़ा वाजिब होगी। इसी तरह सहरी के वक्त